मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 19 अगस्त 2016 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्यारे साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इसी के साथ ही दोस्तों मैं स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान मित्रों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं पवन दीवान जो भोपाल मध्य प्रदेश से हैं और चौधरी जो शाहदा नंदूरबार से हैं। तो पवन और चौधरी आप दोनों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों जैसा कि मैंने कहा आज शुक्रवार है, शुक्रवार को मैं सामान्य तौर पर कुछ सूचनाएं आप लोगों को देता हूं, वो मैं माफ कीजिएगा कि मैं आज भी दे रहा हूं। माफी मैं इसलिए मांग रहा हूं मित्रों, मैं जानता हूं कि जो इन सूचनाओं से परिचित है उन्हें थोड़ी सी खीज होती होगी कि सर क्यों बार बार हर शुक्रवार को इसे दोहराते, हमें तो मालूम है। लेकिन मित्रों आपको मालूम है, ये बात मुझे भी मालूम है, लेकिन जो नए जो स्टूडेंट इससे जुड़ते हैं उन्हें तो ये बात मालूम नहीं होती है। और अगर उन्हें ये बात नहीं बताई गई तो डेफिनेटली वो शनिवार और रविवार को जद्दोजहद करते रहेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि यह मेरा धर्म है कि मैं उन्हें इस बात की इतला करूं। तो मित्रों सूचना यह है कि शनिवार और इतवार इन दो दिनों में डेली ऑडियो गाइडेंस नहीं आता है, लेकिन शनिवार को प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि अखबारों के कतरने आपको मिलेंगी और साथ ही साथ एडिशनल के तौर पर उसमें कुरुक्षेत्र और योजना के भी एक एक आर्टिकल होते हैं। टोटल 4 आर्टिकल होते हैं, 2 आर्टिकल कुरुक्षेत्र योजना के हिंदी के और 2 आर्टिकल कुरुक्षेत्र योजना के इंग्लिश के ही के भी। और मित्रों एक वीकली क्वेश्चन होता है जो मेंस के पैटर्न पर होता है, वो आप लोगों को अभ्यास के लिए दिया जाता है कि आप लोग परिचित हो सकें कि मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावना है और उसे आप कैसे लिखेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास होता है और आप लोगों को पूरी सिंसियरिटी के साथ इस अभ्यास को करना चाहिए। और इसके बाद मित्रों जो हमारे फर्स्ट से फोर्थ बैच के तक के जो स्टूडेंट रहे हैं उनके लिए स्पेशल ऑडियो गाइडेंस और कभी कभी स्पेशल नोट्स जो खासकर फर्स्ट और सेकंड बैच के स्टूडेंट हैं उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ वीकली सूचना थी जो हर फ्राइडे इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं कि ये थी। मित्रों अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। सच पूछे तो न्यूज में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे थे मित्रों जिनको लेकर के मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करना चाहूंगा, खासकर सिविल सर्विस के मेंस को ध्यान में रखते हुए। पहला ही था प्राइम मिनिस्टर का हमारा स्टेटमेंट था जिसमें वो सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं। मित्रों हमारे प्रधानमंत्री जी जब एक अपने चुनावी अभियान में थे और उन्हें प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया था तब भी वो यही बात कहते थे सबका साथ सबका विकास। मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दूं कि सबका साथ का क्या मतलब है और सबका विकास का क्या मतलब है। नो डाउट सबका शब्द से वैसे तो सामान्य रूप से होता है पूरे देश के लोगों का, पूरे देश के लोगों को साथ लेकर के चलना है और पूरे देश के लोगों का विकास करना है। लेकिन जब हम इसे प्रैक्टिकली तौर पर सोचते हैं, चूंकि अब हमारे नरेंद्र मोदी जी जो उस समय चुनाव प्रचारक थे अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या सबका साथ सबका विकास अब भी उसी संदर्भ में अर्थ देगा? इसको थोड़ा सा समझ लें। देखिए सबका साथ का मतलब है सबको साथ लेकर चलना, राइट। लेकिन अब जबकि वो प्रधानमंत्री बन गए हैं तब फिर सबका साथ का क्या मतलब हो जाता है? सबका साथ का मतलब हो जाता है जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी हम साथ लेकर चलेंगे, जो हमारे देश के जो राज्य हैं उन्हें भी हम साथ लेकर चलेंगे। अभी आपने GST में देखा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस में पहली बार, मतलब पिछले कुछ सालों से ऐसी स्थिति बनी है जबकि सभी राजनीतिक दल किसी एक अधिनियम पर किसी एक आर्थिक मुद्दे पर सहमत हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि जीएसटी पर फिर लगातार अन्य राज्यों के द्वारा भी विधानसभा द्वारा पारित किए जाने की न्यूज आप सुन रहे हैं। तो ये सब का साथ हुआ। इसी का दूसरा पॉइंट है मित्रों कि आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी शुरू से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, सहयोगात्मक संघवाद की बात करते हैं और सहयोगात्मक संघवाद इस पर आपके जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर मेन्स में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। सहयोगात्मक संघवाद यानी कि जो राज्य हैं उनका भी हमें साथ चाहिए। देखिए वो ये बात नहीं कह रहे हैं कि बिना केंद्र के साथ के राज्य विकास नहीं कर सकते, है ना। मैं एक व्याख्या करने का आपको एक तरीका बता रहा हूं कि कैसे व्याख्या करके हम चीजों को एक और गहरा अर्थ प्रदान कर सकते हैं, उसे बहुत व्यापक बना सकते हैं और यहां तक उसे ज्यादा व्यावहारिक भी बना सकते हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि केंद्र आपकी मदद करेगी, वो ये कह रहे हैं कि हमें आपका साथ चाहिए, आप हमारी मदद करें ताकि हम आपकी मदद करने के लायक बन सके, हम आपकी मदद कर सके। तो मित्रों ये तो हुआ सबका साथ, क्योंकि जब आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एंटर कर जाते हैं तब बट नेचुरल है कि जनता आपका वैसे साथ नहीं देगी, तो पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से ही जनता साथ देगी। जनता ने अपने अपने प्रतिनिधि चुन करके संसद में भेज दिए हैं, विधानसभाओं में भेज दिए हैं, वो जनता ही है, वो जनता के बीच से आए हैं, अब वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनका अगर हम साथ ले लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से कि जनता का ही साथ लेना कहलाएगा। दूसरा है मित्रों सबका विकास। जब हम सबका विकास की बात करते हैं तो सामान्य अर्थ में तो है ही है कि देश के 125 करोड़ की जो आबादी है उनमें हर एक के डेवलपमेंट के बारे में हम कोशिश करेंगे। लेकिन यदि आप इस बार प्रधानमंत्री जी के 15 अगस्त के भाषण को पर ध्यान दें तो देखिए स्पेशली उन्होंने आम आदमी की बात कही है, कॉमन मैन की बात कही है, क्योंकि जो दूसरा वर्ग है, तबका वर्ग है, जैसे उच्च वर्ग कह लीजिए, उद्योगपतियों का वर्ग कह लीजिए, या यहां तक कि मध्यम वर्ग भी कह लीजिए, कि मध्यम वर्ग तक के विकास को लेकर के तो अब ज्यादा चिंता नहीं रह गई है। देखिए उदारीकरण से पहले डेफिनेटली जो मध्यम वर्ग था वह भी काफी कुछ खदबदाता हुआ वर्ग था, यानी कि उसके अंदर भी एक बड़ी किस्म अलग किस्म की बेचैनी परेशानी थी, अपॉर्चुनिटीज उसे बहुत कम दिखाई दे रही थी, समझ में नहीं आ रहा था किधर जाएं क्या करें। लेकिन जो लिबरलाइजेशन का दौर जब से शुरू हुआ है तो उसने एक बहुत बड़ा रास्ता दरवाजा खोला है, रास्ता दिखा रहा है। तो आप देखिए कि जो मध्यम वर्ग था या निम्न मध्यम वर्ग भी था वो कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। जो निम्न मध्यम वर्ग है वो मध्यम वर्ग में आ गया, जो मध्यम वर्ग है उच्च मध्यम वर्ग में एंटर कर रहा है। तो एक बहुत जबरदस्त सामाजिक बदलाव, सामाजिक जो हमारी संरचना है उसमें भी आपको एक जबरदस्त बदलाव दिखाई देगा। आप यहां तक कि छोटे छोटे शहरों के मोहल्लों में चले जाइए तो वहां भी आपको एक दो घर ऐसे मिल जाएंगे जिनके बच्चे विदेश में नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनकी आय बहुत अच्छी हो गई है। तो ये उदारीकरण की देन है जो मध्यम वर्ग तक सीमित रही, अनफॉर्चुनेट पार्ट इसका ये रहा। जो उसके नीचे का जो वर्ग रहा जिसमें हम किसानों को देखते हैं, मजदूरों को देखते हैं, उनका विकास इनफैक्ट नहीं हो पाया है उस तरीके से। और इसे पूरी दुनिया में एक यूं कह लीजिए कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी सबसे बड़ी कमी भी माना जा रहा है, कि जो ट्रिकल डाउन का सिद्धांत होता था कि ऊपर अगर लोग अमीर बने, धनी बने, तो उनका जो धन है, उनकी जो संपत्ति है, उनकी जो आय है, वो धीरे 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 रिस्क करके नीचे तक पहुंचेगी। इसको उदारीकरण ने एक तरह से झूठा साबित किया है, नीचे तक नहीं पहुंच पा रही है। आप वैसे भी देखेंगे मित्रों कि जो दूसरे बड़े बड़ी जो कंपनीज हैं जाके देखिए तो हायर लेवल पर तो उनकी बहुत अच्छी सैलरी है, हायर लेवल पर बहुत अच्छी सैलरी है, लेकिन जब उसको आप लोअर लेवल पर जाकर के देखेंगे तो वहां आपको सैलरी में कोई बहुत ज्यादा बदलाव दिखाई नहीं देगा। मतलब वहां आपको वे सामान्य सैलरी वाले ही लोग मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक स्वरूप आप कह लीजिए कि हमारे पूरे के पूरे आर्थिक व्यवस्था में दिखाई दे रहा है, जो इनफैक्ट सही मायने में उदारीकरण के कारण हुआ है। तो इस तरीके से जब हम सबका विकास की बात करते हैं कि फिर सबका विकास में कौन लोग आएंगे, तो स्वाभाविक तौर पर फिर उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा जो नीचे के लोग हैं, जिसमें अभी आप देखेंगे कि स्पेशली दलितों की बात होती है, फिर जाकर के गरीबों की बात होती है, मजदूरों की बात होती है, अब उसमें धीरे धीरे थोड़ी बहुत श्रमिकों की भी बात होने लगी है। तो यूं कह लीजिए कि जो आर्थिक रूप से जो एक कमजोर वर्ग है उसे हम एक तरह से सबका विकास के अंतर्गत मानकर चल रहे हैं। तो मित्रों, ये मैंने आपको छोटी सी बात बताई है जिसको लेकर के आपको चलना है और इसको इसी तरह से डिफाइन करना है, इसी तरह से एनालाइज करना है। दूसरी जो खबर थी फ्रेंड्स, वो सार्क सम्मेलन के ऊपर बात थी। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि भारत ने कहा है कि सार्क देशों का वित्त मंत्रियों का सम्मेलन जो पाकिस्तान में होने वाला है, भारत ने अभी तक उसके बारे में फैसला नहीं किया है कि जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कौन जाएंगे। और हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से यही कहा है कि अब भारत पाकिस्तान से जो बात करेगा वो सीमा पार आतंकवाद के बारे में बात करेगा, हम कश्मीर पर कोई बात नहीं करेंगे। मुझे ये लग रहा है कि जो सार्क देशों का जो संगठन है, सार्क संगठन मित्रों, इस पर अब कहीं ना कहीं एक काली छाया मंडराने लगी है। अभी भी एक आरोप लगाया जाता है कि सार्क संगठन ने अभी तक कुछ विशेष हासिल नहीं किया है। दुनिया के जो दूसरे क्षेत्रीय संगठन है वो जबकि इतना आगे बढ़ चुके हैं, हमारा सार्क अभी भी बहुत ही पिछड़ा हुआ है। कोई बहुत ज्यादा प्रगति उसके विकास में नहीं हो पाई है, उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो पाया है। और इसी को लेकर के देखा है आपने कि दो दिन पहले मैंने आपको डॉक्टर भरत झुनझुनवाला का एक लेख भी प्रोवाइड किया था जिसमें उन्होंने प्ली दिया था कि भारत को चाहिए कि वो सार्क देशों को छोड़ दे। और जो सबसे बड़ा जो आरोप लगता है सार्क देशों की असफलता का, वो खासकर पाकिस्तान को लेकर के ही लगता है कि वो अपनी जिद के कारण सार्क संगठन को आगे बढ़ने देना नहीं चाह रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। मित्रों, जो तीसरी खबर थी जो मुझे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगती है वो म्यांमार को लेकर थी। म्यांमार में पहली बार हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जा रही हैं, क्योंकि म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, पुराना नाम इसका बर्मा है। और वहाँ अब पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब पहले तो मिलिट्री रूल्स था, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ आई है। हालांकि वो अर्ध सैन्य शासन ही उसको मान करके चलते हैं जिस तरह का वो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन फिर भी तो अब हमारे विदेश मंत्री जा रहे हैं। और चूंकि वो हमारा पड़ोसी देश है इस लिहाज से भी यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि वहां पहली बार डेमोक्रेटिक सेटअप आया है इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। और हमारे विदेश जो संबंध है पड़ोसी देशों के साथ भारत लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत। तो म्यांमार में अब जो भी बातचीत होगी या जो भी राजनीतिक डेवलपमेंट होंगे उन पर आपका ध्यान रहना चाहिए। तो मित्रों, ये म्यांमार पर था। अब दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, और आप कहेंगे कि महत्वपूर्ण बात अगर इतनी है तो सर आप पीछे बाद में क्यों बता रहे हैं, वो है रियो ओलंपिक। नो डाउट मित्रों, अगर अभी हम पिछले ओलंपिक से तुलना करें तो अभी बहुत पीछे हैं हम। पिछला ओलंपिक जो 2012 में लंदन में हुआ था उसमें भारत को 6 मेडल मिले थे। ये बात अलग है कि उसमें कोई भी गोल्ड मेडल नहीं था, लेकिन टोटल 6 मेडल थे। पहला जो मेडल है वो साक्षी मलिक ने हासिल कर लिया है, जो कांस्य ही है, ब्रॉन्ज मेडल है, वो एक कुश्ती में हासिल की है उन्होंने। और कल जो हमारी जो पीवी सिंधु है वो उन्होंने सेमीफाइनल में जापान की खिलाड़ी को हरा करके फाइनल में प्रवेश कर लिया है। यानी ये कह लीजिए कि उनके एक हाथ में सिल्वर मेडल तो है ही और दूसरे हाथ में गोल्ड मेडल आने को तैयार है। आज मैच होगा, देखते हैं क्या होता है। यहां जो सबसे बड़ी बात है, तो जिधर मैं आपको इंडिकेशन देना चाह रहा हूं वो ये कि इस बीच में जो मैसेज भी व्हाट्सएप पर और सब उन पर आ रहे हैं, एक मेरे पास बड़ा खूबसूरत मैसेज आया था। उन्होंने कहा था कि हम 125 करोड़ भारतीय इकट्ठे होकर के अपनी लड़कियों अपनी बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते, और आज एक लड़की ने हम 125 करोड़ भारतीयों की इज्जत बचाई है। जब साक्षी मलिक को पहला ब्रॉन्ज मेडल, मतलब भारत का कह लीजिए कि मेडल मिला। मित्रों, अब आप देखें कि दूसरा मेडल भी जो मिलने जा रहा है वो पीवी सिंधु है, वो भी महिला है। इससे भी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स, वो ये कि जो साक्षी मलिक है वो हरियाणा की है। आप इसमें अब दो तीन चीजें देखिए जो आप खेल जगत से निकालेंगे, हरियाणा की हैं। और हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां पुरुष और महिलाओं का जो रेशियो है वो काफी कम है। और आपने देखा है कि वहीं हरियाणा से ही प्रधानमंत्री जी ने हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शायद जो कंपेन था वो हरियाणा से ही शुरू किया था, क्योंकि हरियाणा में ये बहुत बड़ा संकट हो गया है खासकर कन्या भ्रूण हत्याओं को लेकर के। और वहां की लड़की आज पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। तो आप इसे इस एंगल से देखिए कि जो समाज लड़कियों को सेकेंडरी मान रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, वहां की लड़कियां सच में कितनी दबी हुई मानसिकता के तहत रह रही होंगी, जी रही होंगी, और इसके बावजूद वो कितनी जिजीविषा के साथ ऊपर उठ करके आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, वो भी पहलवानी में, खुद साक्षी की मां ने यह बात कहा है कि जब पहलवानी की बात आई तो मैं इसके लिए तैयार नहीं थी कि लड़कियां कुश्ती नहीं करती हैं। और आप याद कर लीजिए थोड़े से सुल्तान फिल्म को, सुल्तान फिल्म में भी यही होता है ना, तो ये तो एक विद्रोह है। कोई लड़की, खासकर ऐसे समाज में, ऐसे स्टेट में जहां लड़कियों को बहुत ही परंपरागत तरीके से रखा जाता है, उनके प्रति परंपरागत दृष्टिकोण होती है। हरियाणा में आज भी आप चले जाइए तो आपको महिलाएं घूंघट निकाले हुए मिलेंगे, भले ही वो घर का ही काम कर रही, वो खेतों में काम करती हैं। हरियाणा की जो महिलाएं हैं वो शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत होती हैं, और पहलवानी में जीतना उनका प्रमाण है। और सच पूछे तो हमारे यहाँ जो टोटल मेडल्स आते हैं किसी भी खेल में, तो उसके आधे से अधिक मेडल केवल 2 करोड़ से भी कम आबादी वाला हरियाणा लेकर के आता है। तो जो शारीरिक क्षमता है वो उनमें बहुत ज्यादा है, फिर भी वो आपको घूंघट निकाली भी मिलेंगी। अगर वो गोबर पात्र, कंडे पात्र रही हैं तो घूंघट निकाले हुए मिलेंगी, तो वो परंपरागत समाज है। और अगर उस परंपरागत समाज में एक लड़की पहलवानी में और भारत का पहला मेडल लेकर के आती है ओलंपिक से, तो मित्रों ये कहीं ना कहीं एक बहुत जबरदस्त बदलाव की ओर संकेत करता है। तो आप जब भी ऐसे लिखेंगे, आप मेंस के कोई क्वेश्चंस आपके सामाजिक परिवर्तन से संबंधित हो या खेल से संबंधित हो, तो आप इस घटना का उल्लेख इस रूप में भी कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि थोड़ी सी बात मैं इस रूप में भी करूं। तो मित्रों, सिंधु तो अब आज फाइनल मैच खेलेंगी, 7:30 बजे शाम को उनका फाइनल मैच है। लेट अस होप कि वो भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाएंगे, हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो मित्रों, मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से, सबसे पहले तो सिंधु को उनके फाइनल में पहुंचने पर बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं, और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो भारत को गोल्ड दिलाएं। और जिस तरह से कल वो फॉर्म में थी, क्योंकि मैच मैंने उनका देखा, जिस तरह से वो फॉर्म में थी, मुझे आश्चर्य नहीं लगता है कि वो गोल्ड मेडल नहीं दिला पाएंगी। वो दिलाएंगी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो दिलाएंगी। तो मित्रों, ये AIR न्यूज के बारे में कुछ था। अब मैं आता हूं प्रेस क्लिपिंग्स पर। दोस्तों, आज प्रेस क्लिपिंग्स की संख्या थोड़ी सी कम है, आप लोग खुश हो सकते हैं। इसमें कुछ प्रेस क्लिपिंग्स मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं। एक दलित विमर्श पर प्रेस क्लिपिंग से दैनिक जागरण का, और ये शंकर शरण का लिखा हुआ है, अच्छा लिखते हैं, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी हैं। इसे आप जरूर पढ़िएगा। आप देख रहे हैं कि जो दलित के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और फिर से केंद्र में, अभी चर्चा के केंद्र में दलित समस्या भारत की है, तो आपको कोई इसमें एंगल अच्छा सा मिल सकता है। जो दूसरा लेख है दोस्तों, विराग गुप्ता एडवोकेट हैं, वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने खासकर न्यायपालिका के ऊपर लिखा है, और विराग गुप्ता भी बहुत अच्छा लिखते हैं। अक्सर जब भी मुझे इनके लेख पढ़ने को मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली पढ़ता हूं, क्योंकि NDTV के ब्लॉगर भी हैं, NDTV के ब्लॉग भी लिखते हैं, और चूंकि मैं भी NDTV के ब्लॉग लिखता हूं तो उनके पढ़ने को मिल जाते हैं। खासकर अभी आपने सुना है कि न्यायपालिका, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, न्यायमूर्ति, उन्होंने ये सरकार को कहा है कि भाई हमने नाम भेज दिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नियुक्ति के लिए, और आप उनमें देरी कर रहे हैं, प्लीज जल्दी कीजिए। तो वो एक विवाद में आ गया, इसको न्यायपालिका और एक तरह से विधायिका या कार्यपालिका के टकराव के रूप में देखा जा रहा है। मित्रों, सच पूछे तो बातों को इस तरीके से पेश कर दिया जाता है, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने तो सामान्य रूप में अपनी बात कही है, उसको इस रूप में शायद नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी तो उसी को आधार बना करके उन्होंने कुछ अपनी बातें कही हैं, तो इसमें आपको एक दो बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये 2 आर्टिकल्स मैं बहुत अच्छे आर्टिकल्स आपके लिए मानता हूं। और तीसरा आर्टिकल दैनिक भास्कर में है, मित्र राजदीप सरदेसाई जी का, बहुत अच्छा लिखते हैं ये, इनकी भाषा बहुत ही गजब की है, और खासकर जो पिछले 30-40 साल का जो हमारा समाज रहा है, जो हमारी राजनीति रही है, मैं देखता हूं कि उन पर बहुत गहरी तीक्ष्ण दृष्टि इनके लेखों में मिलती है, बहुत जबरदस्त पकड़ है, और फिर एनालिसिस भी वो उसका बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इसमें खासकर वो खेल क्रांति के बारे में लिख रहे हैं कि भले ही ठीक है जितने भी मेडल मिलेंगे, लेकिन ये पक्का है कि भारत एक तरीके से खेल क्रांति के दौर पर पहुंच गया है, वो स्टेज पर हम आ गए हैं, जबकि एक रिवॉल्यूशन हमें अपने स्पोर्ट्स में दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, ये लेख बहुत अच्छा है, आप इसे पढ़िएगा, और इसमें से डेफिनेटली आपको 2-3 पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे जिसे आप अपने स्पोर्ट्स के लिए नोट करके रखें। मैं ये तो नहीं कहता कि अभी जो दिसंबर में एग्जाम होंगे उसी में ओलंपिक को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिए ही जाएंगे, क्योंकि अगर हम 2012 के ओलंपिक को लें तो उस पर जो क्वेश्चन पूछा गया था 2013 के मेंस में पूछा गया था, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी ऐसा करती है कि जो चीज बहुत ज्यादा चर्चित होती है उसे वो किनारे कर देता है, क्योंकि हर लड़का उसकी तैयारी करेगा। लेकिन जो स्पोर्ट्स है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर आप मान करके चलिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो इसीलिए मित्रों, जो भी इसमें आपको अच्छे पॉइंट्स अपने लिए मिलते हैं तो प्लीज उन पॉइंट्स को आप जरूर नोट कर लें। तो मित्रों, ये था न्यूज़पेपर से। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, खासकर जो हम लोग प्रीलिम्स के पेपर को लेकर के एनालाइज कर रहे हैं, तो मैं आज बहुत ही थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूंगा, और इसी के साथ ही सच पूछे तो मैं आज के लाइफ मैनेजमेंट को भी जोड़ूंगा। दोस्तों, कल के लाइफ मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जो प्री एग्जाम के पेपर अभी हुए हैं इसको लेकर के तीन तरह की प्रतिक्रियाएं रही, अलग अलग प्रतिक्रियाएं, और मैं उस प्रतिक्रिया, मेरी जो अपनी प्रतिक्रिया है वो ये है कि जब मैंने बहुत इत्मीनान के साथ पेपर पढ़ा तो मुझे यह पेपर पिछले साल की तुलना में भी कहीं सरल नजर आया, और इसलिए मुझे लगता है कि जो स्कोर है वो पिछली बार का तो जो कट ऑफ मार्क्स है 52 point something है, 53 मान लीजिए, तो उसके आसपास रहेगा। हो सकता है कि अगर 2-3 मार्क्स टोटल बढ़ भी जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर मुझे सरल लगा। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं हमसे नहीं बनता है, जब नहीं बनता है तो पहली बात जो हमारे दिमाग में उठती है कि पेपर कठिन है, और जैसे ही आप सोचते हैं कि पेपर कठिन है, आप मान लीजिए कि वास्तव में पेपर कठिन हो जाता है। और प्री का जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो यह सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने होती है, सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो शुरू के 5-7 क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं, अब आपको कौन से सेट मिला है, वह ए बी सी डी ए आपके भाग्य के ऊपर है और उसकी शुरुआत कैसे हुई है, तो अगर शुरू के 5-7 क्वेश्चन आपके बन गए तो आपको पेपर ठीक ठाक लगने लगता है, लगता है कि आपके कमांड में है, और अगर नहीं बने तो आपको लगने लगता है कि बाप रे बाप रे, ये पेपर तो बहुत कठिन है। मित्रों, ये शुरुआत की बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं आपको एक स्टूडेंट नफीस अहमद हैं, उनका मुझे मेल आया है, उनका मेल मैं आप लोगों को पढ़कर सुना रहा हूं, तो शायद आप मेरी बात पर थोड़ा सा यकीन कर सकेंगे, क्योंकि मित्रों मुझे मालूम है कि ज्यादातर स्टूडेंट जो सिविल सर्विस की तैयारी है, इतना इतना टफ कॉम्पिटिशन जहां है, उनका सारा जो सारा जोर नॉलेज कंटेंट पर होता है, वो दूसरी चीजों को इग्नोर कर जाते हैं, और वही चीज उनकी असफलता का फिर कारण भी एक बन जाती है। मैं तो ये नहीं कहता कि वही उन्हें असफल बना देती है, लेकिन असफल होने के जो बहुत से कारण होते हैं उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी बन जाती है। आप नफीस अहमद का एक जो मेल है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, आप देखिए। श्रीमान प्रणाम, जैसा कि IAS प्री एग्जाम के बारे में जिसको लेकर DAG में इस वक्त मुख्य रूप से बातें हो रही हैं, इसलिए इस पेपर एक को लेकर मेरा मत भी बिल्कुल स्पष्ट है। मैं DAG को लगभग 2 साल से लगातार सुन रहा हूं, दुर्भाग्यवश 15 दिवसीय कक्षाओं का अंग नहीं बन पाया। बावजूद इसके मैं आपको और AFE टीम के प्रति संपूर्ण रूप से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मैं इस लायक बन सका। बिना आपके तो मेरा वर्तमान अद्भुत जीवन संभव ही न था, इसके लिए फिर से तहे दिल से धन्यवाद और आभार। एग्जाम हॉल में पेपर को देखने के बाद जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, जैसे पेपर का पैटर्न तो यही होना ही था। माहौल बिल्कुल खुशनुमा बन गया, कुछ प्रश्न तो जैसे इंतजार कर रहे थे, जिसमें मुद्रा बैंक, अटल पेंशन, मिशन इंद्रधनुष, डिजिटल लॉकर, भुगतान बैंक, उदय योजना, फसल बीमा योजना, नीम कोटेड यूरिया, भारत अफ्रीका सम्मेलन और क्योटो प्रोटोकॉल इत्यादि संबंधित प्रश्न प्रमुख थे। ये पेरिस सम्मेलन समझ लीजिए, प्रश्न प्रमुख थे। इसके अलावा आपकी बिल्कुल पतली सी किताब आजादी की कहानी एवं 4 मॉक टेस्ट जो AFEIS.com पे आपने डाला था, इससे काफी मदद मिली। जब दोस्तों से इसके बारे में डिस्कस किया तो वो इस बात से ज्यादा आश्चर्य थे कि बिना कोचिंग के इतने टफ एग्जाम को इतना सरल तरीके से कैसे लिया जा सकता है। मेरे हिसाब से इससे या तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही आया होगा या मेरा डींग हांकना समझ रहे होंगे। इससे AFEIS के प्रति भी उनके यकीन में भी प्रत्यक्ष रूप से इजाफा हुआ होगा। अतः एक बार पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपके अथक प्रयास से मेरे स्तर पर तो मुझे अपरिहार्य लाभ हुआ है। ये मित्रों, इन लोग इनका नफीस अहमद का पूरा मेल है। अब आप देखिए कि इसमें जो व्यक्तित्व है या लाइफ मैनेजमेंट है उसके कौन से सूत्र निकलते हैं। तो 2 सूत्र आपको दिखाई देंगे, और एग्जाम के भी हैं, एग्जाम के भी। नंबर एक कि जो आपका प्री का पेपर है वो मैक्सिमम करेंट अफेयर्स पर बेस्ड होता है, करंट अफेयर्स पर बेस्ड होता है। यहां तक मित्रों की जो मेंस का है वो भी करंट अफेयर्स पर बेस्ड है। तो यदि आप करंट से जुड़े हुए हैं तो आपको प्री का जो पेपर है वो सरल लगेगा। अब सवाल ये है कि आप प्री के करंट अफेयर्स से जुड़े कैसे रहें, ये सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप सोचेंगे कि महीने में जो एक मैगजीन आती है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की और उसमें महीने भर में हम एक बार पढ़ लेंगे और हमारा काम चल जाएगा, तो आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि मित्रों उस समय आप पढ़ लेंगे, चीजें आपके दिमाग में परत दर परत नहीं बैठेंगी, जो सिविल सर्विस की जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वहां आप चूक जाएंगे और नतीजा यह होगा कि आपको लगेगा तो कि मैंने कभी पढ़ा था, लेकिन आप जो एग्जैक्ट आंसर उसका जो दिया जाना चाहिए वह आंसर आप नहीं दे सकेंगे और मामला खत्म हो जाएगा। तो मित्रों जो प्री का इस बार का पेपर रहा है, सच पूछे तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल ज्यादा है, मनोवैज्ञानिक ज्यादा है। और आपको शायद सुनकर आश्चर्य होगा, और इसके बाद ही मैं प्री के पेपर के बारे में अपनी बात खत्म करूंगा, इस बार जो टोटल क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस आए हैं, क्या आप यकीन करेंगे कि इसमें 29 क्वेश्चंस, इट मे बी मोर देन 29, ऐसे हैं जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉमन सेंस की डिमांड करते हैं, सिर्फ कॉमन सेंस की। उन प्रश्नों को आप कभी पढ़कर तैयार कर ही नहीं सकते, इट रिक्वायर्स कॉमन सेंस। मैं आपको अगले में बताऊंगा कि वो किस तरह से कॉमन सेंस मांगते हैं। 30% क्वेश्चंस आप सिर्फ कॉमन सेंस से कर रहे हैं, और यह मत समझिए कि जो रिमेनिंग 70% हैं वो आप नॉलेज के आधार पर कर लेंगे ना, मतलब ना, ऐसा नहीं कि नॉलेज के आधार पर कर ही नहीं सकेंगे, उसमें कुछ दूसरी चीजें लगेंगी, लेकिन ये जो 30% है ये तो प्योरली कॉमन सेंस पर आधारित है। तो मित्रों इस बार का जो सिविल सर्विस प्री का जो क्वेश्चन पेपर है वो बेसिकली नॉलेज और इंफॉर्मेशन पर कम बेस्ड है, और सच पूछे तो कॉमन सेंस पर बेस्ड अधिक है। तो मित्रों ये आज के जो प्री का पेपर की जो का जो एनालिसिस था उसके बारे में था। अब मैं वक्त ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी लाइफ मैनेजमेंट के बारे में मैं कुछ बातें थोड़ी सी बातें कहना चाहूंगा। मित्रों जैसा कि अभी मैंने कहा कि जो सबसे बड़ी चीज होती है वो दिमागी ताकत होती है, और यदि कल आपने सिंधु का मैच देखा हो तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो फर्स्ट पहला जो मैच हुआ है जिसमें हालांकि सिंधु जीती, लेकिन उसमें बहुत टफ फाइट, जापान के खिलाड़ी ने बहुत टफ फाइट दिया। सेकेंड मैच में मैं देख रहा था कि 10-10 तक, जब तक कि दोनों के नंबर थे तब तक तो फाइट बहुत टफ रहा, लेकिन इसके बाद जैसे ही सिंधु ने 3-4 पॉइंट लीड कर लिया, मतलब 13-14 तक पहुंच गई, तो साफ दिखाई दे रहा था कि जापान के खिलाड़ी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं, मानसिक रूप से कमजोर हो गई है। और मैंने उसी समय डिक्लेयर कर दिया था कि अब जापान के खिलाड़ी अगर 1-2 पॉइंट भी बना ले तो बहुत बड़ी बात होगी। इसके बाद वो टकराने लगी थी, गिरने लगी थी, और वो भी वर्ल्ड में 6th रैंक की खिलाड़ी थे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐरे गहरे के साथ पड़ गया था, वर्ल्ड में उनकी रैंकिंग 6th है, वो गिर रही हैं, सामान्य से शटल को भी वो उठा नहीं पा रही हैं, तो उनका खेल गड़बड़ हो गया। तो ये खेल गड़बड़ क्यों हो गया मित्रों, अचानक क्या हो गया, वही थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से खेल रही थी वही अब इतनी गड़बड़ी से खेल रही हैं। और इसके बाद तो फिर सिंधु ने उस मैच को बड़े आराम से जीत लिया, बड़े आराम से जीत लिया। मित्रों वहां दिखाई दे रहा था कि सिंधु के अंदर कितनी ज्यादा एक जो किलिंग इंस्टिंक्ट है और एक जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल है, दिमागी ताकत है, वो कितनी ज्यादा है। आपने आज के अखबार में साक्षी मलिक का शायद वो वक्तव्य पढ़ा हो, बड़ा प्यारा सा वक्तव्य है कि बचपन में बस मेरा एक ही सपना था कि मैं जहाज में बैठूं, प्लेन में बैठूं, और मैं ये जानती थी कि खिलाड़ियों को प्लेन में बैठने का खूब मौका मिलता है, तो बस वो खिलाड़ी बन गए। आप देख रहे हैं कि कैसे एक छोटे से दिमाग में एक प्लेन में बैठने की इच्छा, बीज, सीड्स जिसे मैं कहता हूं, केवल ये था। और उसने उनको किस तरीके से आज भारत का सिरमौर बना दिया है, लोगों के सिर आंखों पर साक्षी मलिक मौजूद हैं। तो मित्रों ये दिमाग की वास्तविक ताकत होती है, और मैं चाहता हूं कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो दिमाग की इस ताकत को समझें और न केवल समझे ही बल्कि इसके लिए हर संभव कोशिश करें। जब आप अपने को बहुत प्रोटेक्ट करके चलेंगे तो याद रखिए कि दिमाग की ताकत आप कभी हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए तो आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, अपने लिए संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ेगा, अपने लिए समस्याएं खड़ी करनी पड़ेंगी और फिर उसे जूझना भी पड़ेगा। समस्याएं खड़ी करने का मतलब नहीं कि आप जबरदस्ती खड़ी कर लें, खड़ी तो समस्याएं होती ही रहती है, हम भाग जाते हैं, हम घबरा जाते हैं या दूसरों को सौंप देते भैया कि तू निपट, मुझे तो पढ़ने दे। तो मित्रों दिमाग की ताकत को आप लोग समझें और आप देखेंगे कि ये दिमाग की ताकत सिविल सर्विस की तैयारी करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों अब मैं अंत में आता हूं आज के ईमेल पर। एक बड़ा प्यारा मेल आया है रंजीत रंजन का, जो नवादा बिहार से हैं। उन्होंने बताया है कि सर आपकी बातें सुन करके मैंने अब पौधे लगाने का फैसला किया और उन्होंने अपने गांव में एक टीम सी बना ली है, वहां के फॉरेस्ट गार्ड से मिले और लगभग 200 पौधे उन्होंने अपने गांव में लगाए और आप डीएजी के डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में भी लोगों को बता रहे हैं। तो रंजीत इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके इस काम की मुक्त कंठ से सराहना करता हूं। डीएजी की सूचना देने वालों में विशाल ने भी मेल लिखा है जो जमशेदपुर से हैं और लोगों को डीएजी की सूचना दे रहे हैं। और इसी तरह का एक मेल मित्रों धीरेन्द्र कुमार का है, उन्होंने लिखा है कि डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में उन्होंने अपनी मां को बताया और उनकी मां ने सुना और उनको बहुत पसंद आया। तो फिर उनकी मां ने, वो गांव में रहती हैं, तो उनकी मां ने गांव की महिलाओं को बताया तो और आज लगभग 30 महिलाएं उस डेली ऑडियो गाइडेंस को रोज सुनती हैं। तो धीरेन्द्र इस बात के लिए मैं बहुत आंतरिक हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपकी मां को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने पसंद करने के बाद उसे सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि उन्होंने गांव की महिलाओं को जोड़कर और उनको भी सुनाना शुरू किया है। मित्रों चेतना में जिस दिन बदलाव हो जाएगा सब कुछ बदल जाएगा और मुझे लग रहा है कि आपकी मां ने उसी दिशा में एक कदम उठाया है। तो मित्रों अब मैं अपने ईमेल, मुझको ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं विनूथना प्रकाश, अखिलेश कुमार डेहरिया चेन्नई, जावेद मंसूरी, दिनेश सिंह चौहान अजमेर, नीतीश कुमार बेगूसराय बिहार, हंस राज तेली बूंदी राजस्थान से, किशन मेवाड़ा पालीताना गुजरात से, कुलदीप सिंह आगरा से, पुष्कल चौधरी मेरठ से और सुनील कुमार सीकर राजस्थान से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों अब मैं आप सबके लिए कामना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले दो दिन बेहद खुशनुमा हों, बेहद ऊर्जावान हों और बेहद उपयोगी भी हों। और इसी के साथ ही अब आज के इस ऑडियो गाइडेंस को समाप्त करते हुए दो दिन के लिए इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।